नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहेमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है।
ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है।
आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है।
धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है।
सब पर बराबर, चाहे धनी या गरीब कोई,
पाया है सबने द्वार से तेरे, खाली न लौटा है कोई,
खाली न लौटा है कोई।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं, और हमेशा की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के जीवित वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों हम नहेमिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइली जो बंधुआई में चले गए थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का अर्थात वाचा का उल्लंघन किया, लेकिन जब वापस आए तो इज़रा के द्वारा मूसा की व्यवस्था के पढ़े जाने के बाद जब उन्होंने इस बात को समझ लिया तो उन्होंने विलाप किया, अपने पापों का अंगीकार किया, और तब हमने देखा कि उनके जीवन में जागृति आई। जी हाँ, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे धर्म सुधार के बारे में। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम मनन चिंतन करते हैं, आपके वचन में से सीखते हैं, सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं हम उसे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से आप हम सबकी रक्षा करें। हमारे उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए जो तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, संतान की इच्छा रखते हैं। प्रभु, आप सबकी मनोकामना को पूरा करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नहेमिया की पुस्तक 11 अध्याय से 13 अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11 में एक बड़ी सूची है जो अध्याय 12 तक जाती है। ये वे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते थे। आप मेरे साथ निकालिए नहमिया 11 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाएं और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसें। उन्होंने चिट्ठियां डाली, 10 में से एक मनुष्य को यरूशलेम में रहना था और बाकी 9 को किसी दूसरे नगर में जाना था। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें शिकायतों का अवसर उत्पन्न हो सकता था। उन्हें अच्छा अवसर मिल गया था कि कहें, परमेश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं एक छोटे से शहर या गांव में रहूं तो अच्छा होगा। आगे देखेंगे नहमिया 11 उसके 2 में लिखा है, जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस युग में भी ऐसे मनुष्य थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहना चाहते थे, परंतु जो यरूशलेम में रहना चाहते थे उनके लिए उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये लोग हमारे लिए अपरिचित हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से हर एक को जानता था। उसने उनका नाम लिख लिया क्योंकि उनमें आज्ञाकारिता का मन था। नहमिया 11 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपने निज भूमि में रहता था, अर्थात इसराइली, याजक, लेवीय, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। निम्नलिखित पदों में उन मनुष्यों के नाम हैं जो यरूशलेम में रहना चाहते थे। परमेश्वर आज्ञा मानने वालों पर विशेष ध्यान देता है। मित्रों, अध्याय 12 में सूची अभी समाप्त नहीं हुई है। यहाँ जिनके नाम है ये वे मनुष्य हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वर्षों पूर्व मेरे सेवकाई में एक महिला से मेरी मुलाकात हुई जो अंधी हो रही थी। मैं उसे भेंट करने जाता था। वह पहिए वाले कुर्सी काम में लेती थी और आप सोचेंगे कि उसे सहायता और ढाढ़स बंधाने की आवश्यकता थी। मैं आपको सच कहता हूँ कि उसे सहायता की आवश्यकता नहीं थी। सहायता की आवश्यकता तो मुझे थी। उन दिनों मैं एक युवक ही था और मैं उसकी बातें सुनने जाता था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की स्तुति करती थी। वह परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकती थी? अध्याय 12 में उनके नाम है जो परमेश्वर की स्तुति करते थे, और मैं सोचता हूँ कि उस महिला का नाम भी परमेश्वर की सूची में होगा। हमारे पास परमेश्वर की वर्तमान सूची तो नहीं है, परंतु वह सूची वही समाप्त नहीं हो गई थी। वह आज भी नाम लिखता है। इस अध्याय का अधिकांश भाग शहरपनाह के समर्पण के संबंध में है। वह एक रोमांचकारी अवसर था। तो मित्रों, आइए हम देखें नहमिया की पुस्तक 12 अध्याय उसके 27 और 28 पद में। यरूशलेम के शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतीक्षा करें। जो गवये के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांव से, ध्यान दीजिए, उन्होंने सब जगहों से अपने गायक बुलवाए और बहुत बड़े संगीत समारोह का आयोजन किया। इन सब के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यह समारोह यरूशलेम की शहरपनाह के समर्पण के निमित्त था। जी हाँ, नहमिया ने संपूर्ण प्रदेश से इसराइलियों को बुलवाया कि समर्पण समारोह में सहभागी हो, क्योंकि यरूशलेम में उनका मंदिर था। नहमिया 12 अध्याय उसके 40 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। ध्यान दीजिए, अगली सूची में याजकों के नाम, वे सब वहां उपस्थित थे। नहमिया 12 उसके 43 पद में लिखा है, उसी दिन उन्होंने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंदित किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। वहां से आने जाने वाले परदेशी, आगंतुक, पर्यटक और अन्य लोगों ने स्तुति और आनंद की ऊंची आवाज सुनी तो उन्होंने कहा होगा, यहाँ हो क्या रहा है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने जाकर देखा होगा। अन्य जाति संसार के लिए यह कैसी महान गवाही थी। एक बार मैं एक स्टेडियम के निकट से जा रहा था कि खुशी की बहुत ऊंची आवाज सुनी। वह खेल बड़ा रोमांचक था। मैंने सोचा कि मैं भी वहां होता तो कितना अच्छा होता। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मैंने सोचा मेरे प्रचार के समय यदि ऐसा आनंद का स्वर उठे तो कितना अच्छा हो। पूरा समाज सुनेगा और लोग देखने आएंगे कि क्या हो रहा है। मित्रों, आज आराधनालय के निकट से लोग निकल जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि हम नीरस और निष्क्रिय समुदाय हैं, और वे 90% सही हैं। आज हमारी कलीसियाओं में प्रभु के आनंद की बहुतायत होना चाहिए। फिलिपियों के पत्र में पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि हम देखेंगे कि सामर्थ का स्रोत आनंद है। स्मरण कीजिए कि नहमिया ने कहा था, प्रभु का आनंद तुम्हारा बल हो। जी हाँ, यदि आप एक सिसकते शिशु हैं तो आपकी गवाही प्रभावी नहीं होगी। एक महिला ने मुझे कहा, मेरे पति ने उधार नहीं पाया है और मैं उसे कायल करने में असमर्थ हूँ। मैं सुबह नाश्ते के समय उससे चर्चा करती हूँ। मैं रो रो कर उसे कहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और चाहती हूँ कि उसका उद्धार हो। रात के भोजन के समय भी वह यही बात करती है। मैं सोचने लगा, क्या आप एक रोती हुई स्त्री के साथ नाश्ता एवं रात का भोजन करना चाहेंगे? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। जी हाँ, इससे पाचन क्रिया को कोई लाभ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पति उसके इस व्यवहार से ऊब चुका होगा। कुछ समय बाद मैंने उससे कहा, मेरी राय में आप उनसे नाश्ते के समय और रात्रि भोजन के समय इसकी चर्चा न करें। उसने कहा, ओह, आपके कहने का अर्थ है कि मैं गवाही देना छोड़ दूं? मैंने कहा, जी हाँ, इस तरह गवाही देने की अपेक्षा आप एक नई विधि अपनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, रोना छोड़ दें। प्रभु का आनंद आपका बल है। मित्रों, अध्याय 13 में हम फिर देखेंगे कि अनंत सावधानी स्वतंत्रता का मूल्य है। यह मसीही मुक्ति और मसीही स्वतंत्रता का मूल्य भी है। अध्याय 12 और 13 के मध्य नहमिया शूशनगढ़ के महल में अपनी सेवा के लिए लौट गया। स्मरण रखें कि वह केवल छुट्टी लेकर यहाँ पर आया था। वह फारस में कुछ समय नौकरी पर रहा, 1 या 2 वर्ष, और फिर छुट्टी का निवेदन किया कि यरूशलेम को जाए। उसे वहां की दशा देखकर विस्मय हुआ। वे अपना पृथकीकरण बनाए हुए नहीं थे। नहमिया 13 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मुआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन विलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इसराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। विलाम की कहानी गिनती की पुस्तक अध्याय 23 उसके 24 पद में है। इसराइलियों ने उसकी कहानी पढ़ी और निर्णय लिया कि परमेश्वर के वचन का पालन करना ही उचित है। उन्होंने परमेश्वर द्वारा वर्जित अमोनियों और मुआबियों के साथ विवाह किया था। इसराइल वंशियों ने संकल्प किया कि उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। तब हम आगे पढ़ते हैं नहमिया 13 अध्याय के 4 पद में, इससे पहले एलियाशिब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था। ध्यान दें, यहां है वह महायाजक जो तोबियाह का संबंधी था। पृथकीकरण के संबंध में महायाजक ने स्वयं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। परमेश्वर ने अन्य जाति से विवाह करना स्पष्ट मना किया था। मेरे विचार में परमेश्वर ने उन्हें जो उदाहरण दिया वह बड़ा ही रोचक है। बैल और गधे को हल में एक साथ नहीं बांधते हैं। बैल एक शुद्ध पशु है और गधा अशुद्ध, इसलिए उन्हें एक साथ नहीं जोतना है। विश्वासी और अविश्वासी को भी एक साथ नहीं होना है। मेरे मित्रों, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जिसने एक सिद्धांत को न जानते हुए साझेदारी की और आज बहुत दुख उठा रहा है। हमें विवाह हो या व्यापार, विषम साझेदारी के साथ संबंध नहीं बनाना है। नहमिया 13:5 में हम पढ़ते हैं, उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी और याचकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। ध्यान दीजिए, उस महायाजक ने मंदिर का भंडार गृह तोबियाह को सौंप दिया था। वे श्रद्धालुओं के बलिदान भंडार गृह में नहीं रख रहे थे। उन्होंने वहां से सब सामान बाहर निकाल दिया और वे तोबियाह के लिए गलीचा, मूल्यवान सामान और शयन सामग्री तैयार करके तोबियाह को वहां स्थान दे दिया। उन्होंने उससे कहा कि वह जब भी चाहे वहां आकर रह सकता है। तब हम आगे पढ़ते हैं नहमिया 13:6-8 में, परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थशत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। देखिए, यह सब नहमिया की अनुपस्थिति में हुआ था। मैं नहमिया को सराहता हूँ। उसने कहा, हम तोबियाह से मुक्ति पाएंगे, वह परमेश्वर के भवन में रहने नहीं पाएगा। आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु यीशु ने इफिसुस की कलीसिया की सराहना की थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:2 में लिखा है, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। अतः नहमिया मंदिर में गया और तोबियाह का सामान बाहर फेंक दिया। उसने तोबियाह से कहा, तू यहां नहीं रहने पाएगा, तेरा निर्मल आनंद अब समाप्त हो गया है। मित्रों, हम नहमिया 13:9 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अनबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। नहमिया ने उन कक्षों का शोधन किया और वहां मंदिर का सामान फिर से रखवाया। अब नहमिया यही नहीं रुका। नहमिया 13:10 में आगे लिखा है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेविये और गवये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। ध्यान दीजिए, मंदिर में सेवा करने वाले लेवियों को उचित आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा था, अतः उन्हें खेतों में मजदूरी करना पड़ता था। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की सेवा में विघ्न आ रहा था। मेरे विचार में आज मसीही सेवकों से आशा की जाती है कि वे क्षमता से अधिक परिश्रम करें। परिणाम यह होता है कि उन्हें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय भी नहीं मिल पाता है। कलीसिया अपने पास्टर से आशा करती है कि वह व्यवस्थापक का काम करे और अन्य सब काम करे। उसे कलीसिया के उत्तरदायित्व में सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि वह वचन के अध्ययन और प्रार्थना में समय दे पाए। मैं नहमिया को सराहता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, जिसका कारण अब आप देखेंगे। उसने कहा कि सेवकों के भत्ते में वृद्धि की जाए। उसने कहा, तुम लोग मंदिर का अधिकृत दशमांश लाओगे और सुनिश्चित करोगे कि परमेश्वर के सेवकों की यथा उचित सुधि ली जाए। मैं ऐसे अयाजकीय पुरुष को अत्यधिक सराहता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर ने उसकी इस बात को स्वीकार किया। हम नहमिया 13:14 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल। नहमिया ने परमेश्वर से निवेदन किया कि उसे स्मरण रखे और परमेश्वर ने अपने पवित्र पुस्तक में इसे लिख लिया। नहमिया ने उनकी एक और चूक पकड़ी, वे विश्राम दिवस का उल्लंघन कर रहे थे। नहमिया 13 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे, वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। वे समुद्र तट से मछली लेकर आते और बेचते थे। नहमिया 13 अध्याय के 17 पद में लिखा है, तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। यह वहां के रईसों का काम था जो इस प्रकार के काम को करवा रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं नहमिया 13 अध्याय के 18 पद में, क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली, तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। नहमिया ने उन्हें स्मरण कराया कि इसी अनर्थ के कारण पूर्व काल में इसराइल को परमेश्वर ने दंड दिया और हम बंधुआई में चले गए और आज तुम फिर से इसी काम को कर रहे हो। नहमिया 13 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, अतः जब विश्राम वार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम वर को कोई बोझ भीतर आने न पाए, इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहर पनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्राम वार को नहीं आए। मित्रों, विश्राम दिवस से पूर्व सूर्यास्त पर नहमिया ने आज्ञा दी कि नगर द्वार बंद कर दिए जाएं। व्यापारी अपना सामान लेकर आए तो वह कहां बेचेंगे? नहमिया शहरपनाह पर खड़ा देख रहा था कि वे आए। वे विश्राम दिवस पर आए तो नगर द्वार बंद थे। उन्होंने अगले विश्राम दिवस फिर आने का प्रयास किया, नगर द्वार फिर से बंद पाए गए। नहमिया ने उनसे कहा कि वे फिर वहां विश्राम दिवस पर दिखाई दिए तो खदेड़े जाएंगे। वे समझ गए कि नहमिया गंभीर था, अतः उन्होंने विश्राम दिवस पर वहां आना बंद किया। हम देखते हैं कि नहमिया उनके एक और अपराध को देखता है। नहमिया के पुस्तक 13 अध्याय 23 से 25 पद में लिखा है, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अम्मोनी और मुआविया स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। नहमिया ने देखा कि यहूदियों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया है। नहमिया ने उन्हें डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवाया और उनके बाल भी नुचवाए। कोसने का अर्थ यह नहीं कि उन्हें बुरा भला कहा, परंतु यह कि उन्हें श्राप दिया। उसने उनसे शपथ खिलवाई कि वे अन्य जातियों से विवाह न करेंगे। उसने कठोरता का व्यवहार किया और यह आवश्यक भी था। मित्रों, जागृति सदैव सुधार लाती है। जागृति आ जाने पर जो भी शोधन करना है वह किया जाना अवश्य है। नहमिया अंत में कहता है, जिसे हम 13 अध्याय 29 से 31 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवी की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। मित्रों, ये पद नहमिया द्वारा अपनी प्रजा के आत्मिक कल्याण का सारांश है। सम्मान और उत्तरदायित्व के पद से सब परदेशी हटा दिए गए थे। मंदिर की भेंटें फिर से आने लगी थी। लेवियों और याचकों को उनकी सेवाएं लौटा दी गई थी। नहमिया के अंतिम शब्द थे, हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। हमारे प्रभु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने वचन में उसके काम लिख लिए गए, जो एक सदा की यादगार बन गई। मैं भी उसे स्मरण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी उसे स्मरण रखेंगे। जी हाँ, वह परमेश्वर का एक महान आयाजकीय सेवक था, जो परमेश्वर का भय मानता था, और उसने अपने लोगों को छुड़ौती दी, न केवल शहरपनाह बनाने में, परंतु उनकी जो भी बुरी बातें थी जो उनके पुरखों ने किया था, जिसके कारण से उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा था, उन सब से भी उन्हें छुटकारा दिलवाया, अर्थात एक नई जागृति उन लोगों के बीच में लाई। मेरे मित्रों, क्या आज आप भी उन पुराने व्यवहारों में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या आपका जीवन पापमय है, या आप उससे निकल करके परमेश्वर के लिए नए रास्ते पर चल पड़े हैं? आज अपने जीवन की ओर मुड़ करके देखें, क्या आप नहमिया के जीवन से इन बातों को सीखना नहीं चाहते? यदि हाँ, तो आज के वचन के आधार पर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और निश्चय जाने कि वह आपकी भी सहायता करेंगे, ताकि आप भी कह सकेंगे, हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगले अध्ययन में हम नए पुस्तक में नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु में बने रहें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी नजरे सब पर बराबर, चाहे धनी या गरीब कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन सवार दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है।